श्रीपाद माधवेंद्र पुरी, इनकी चर्चा पिछले दो दिनों से चल रही है। आज उनके गुणगान में आज तीसरा प्रवचन है, चौथा कल होगा। कल हम ये देख रहे थे कि किस तरह से भगवान श्री गोपीनाथ जी ने माधवेंद्र पुरी के लिए खीर चोरी की थी और इसलिए वो खीर चोरा गोपीनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। और आज भी ये मंदिर रेमुना में, बालेश्वर उड़ीसा में है और कृष्ण भक्त वैष्णव वहां जाकर गोपीनाथ जी की कृपा याचना करते हैं और उसी खीर का सेवन करते हैं। और ये भी हमने देखा किस तरह से माधवेंद्र पुरी ने गोपाल जी की इच्छा पूरी की, जगन्नाथपुरी में जाके चंदन, मलय चंदन और कर्पूर लाकर वो गोपाल जी के लिए वापस वृंदावन ले जा रहे थे कि गोपाल जी ने उनको आदेश दिया कि नहीं, रमुना में गोपीनाथ जी के ऊपर ही ये लेप लगाना और मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो माधवेंद्र पुरी एक भगवान के महाभागवत भक्त हैं। पिछले दो दिन में चर्चा की हुई घटनाओं से ये तो साफ साफ सिद्ध हो जाता है। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि जिस तरह से जब श्री कृष्ण अवतार लेते हैं तो उनके आने के पहले वो अपने नित्य पार्षदों को भेज देते हैं और ये नित्य पार्षद जो हैं ये अलग अलग भूमिकाओं में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। कोई उनके माता के रूप में आते हैं, कोई पिता के रूप में, कोई गुरु के रूप में, कोई दूसरे और रिश्तेदारों के रूप में, कोई मित्रों के रूप में। इस तरह से अलग अलग भूमिकाओं में उनके अलग अलग नित्य पार्षद आते हैं उनके संग, बल्कि उनके पहले, ताकि वो एक तरह का बैकग्राउंड, एक तरह का वातावरण तैयार हो। कृष्ण भगवान के आने के पहले क्षीरोदक्षाय विष्णु ने सारे देवताओं को आदेश दिया था कि आप सब यदुकुल में जन्म ले लो ताकि मेरी लीला में आप सहायता कर सको। तो उसी तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु तो वही श्री कृष्ण है और जब वो इस रूप में आते हैं तो इस समय भी उनके नित्य पार्षद जो हैं वो आते हैं और उनके पहले आते हैं कई। ऐसे कई नित्य पार्षदों के नाम खास करके बताए हुए हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। वैसे तो कई हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से थोड़े हैं जिनका विशेष उल्लेख कृष्णदास कविराज गोस्वामी करते हैं। उनमें हैं उनके पिता जगन्नाथ मिश्र, माता शची माता, उनके गुरु ईश्वरपुरी, उनके सन्यास गुरु केशव भारती, अद्वैत आचार्य श्रीवास पंडित, हरिदास ठाकुर, आचार्य रत्न, विद्यानिधि और माधवेंद्र पुरी। तो माधवेंद्र पुरी भी ऐसे भगवान के नित्य भक्त, नित्य पार्षद, शुद्ध भक्तों में से है जो कि भगवान के धाम से आए हैं भगवान की लीला के लिए, अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए, भगवान की लीला को और भी मधुर बनाने के लिए। अभी माधवेंद्र पुरी जब आए तो उस समय चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य भी नहीं हुआ था। तो ऐसे कहा जा सकता है कि अगर वो चैतन्य महाप्रभु के उपस्थिति में प्रकट नहीं हुए तो क्या कारण था उनका आने का। वास्तव में उन्होंने सीन तैयार किया, उनके लिए एक अनुकूल परिस्थिति बनाई जिसमें कि वो आ सके। और यही कारण था कि देवताओं को कृष्ण भगवान ने कहा था कि मेरे से पहले आप जाकर तैयारी करो, ताकि मैं जब आऊं तो सब ठीक ठाक हो जाए। तो उसी तरह से माधवेंद्रपुरी हालांकि चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पहले ही वो इस संसार को छोड़ चुके थे, फिर भी उनका उनकी जो भूमिका थी यहां, उनका जो कार्य था वो बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने वातावरण तैयार किया। कैसे वातावरण तैयार किया वो आगे चल के हम चर्चा करेंगे। तो जिस तरह से स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं तो गुरु को स्वीकार करते हैं, किसी प्रामाणिक संप्रदाय में दीक्षा लेते हैं, तो ठीक उसी तरह से उनके शुद्ध भक्त भी करते हैं। तो माधवेंद्रपुरी जब प्रकट हुए तो उन्होंने दीक्षा ली मध्वाचार्य की संप्रदाय में, जिस संप्रदाय में हम हैं। और मध्वाचार्य की संप्रदाय तो भगवान श्री कृष्ण से ही आती है। जैसे आप जानते हैं चार वैष्णव संप्रदाय हैं और उनमें से एक है मध्वाचार्य की संप्रदाय, जो कि भगवान श्री कृष्ण से शुरू होती है। फिर ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया नारद को, नारद मुनि ने उपदेश दिया व्यासदेव को, व्यासदेव ने कई शिष्यों को उपदेश दिया, उनमें से एक थे मध्वाचार्य। भगवत गीता के भूमिका में प्रभुपाद जी यहां सारे परंपरा का वर्णन करते हैं कि हमारी परंपरा क्या है। तो हम देखते हैं कि मध्वाचार्य के बाद में आए पद्मनाभ, उनके बाद में नरहरि, माधव, अक्षोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, और लक्ष्मीपति के बाद में आए माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी ने दीक्षा ली थी श्रीपाद लक्ष्मीपति तीर्थ महाराज से, जो कि उस समय मध्व संप्रदाय में आचार्य थे। जैसे आप जानते हैं कि मध्वाचार्य ने अष्टमठ का निर्माण किया उनके तिरुभाव के पहले, ताकि कृष्ण मंदिर का कार्य अच्छी तरह से चल सके। आठ मठ बनाए उन्होंने और उनके अलग अलग आचार्य हैं। तो लक्ष्मीपति तीर्थ महाराज वो भी उनमें से एक थे और उनसे माधवेंद्रपुरी ने दीक्षा ली थी। अभी हालांकि माधवेंद्रपुरी ने उनसे दीक्षा ली मध्व संप्रदाय में, फिर भी उनके भक्ति से यह प्रतीत होता है कि उनके भक्ति में और जो मध्वाचार्य संप्रदाय में भक्ति चल रही थी उसमें थोड़ा कुछ अंतर भी था। चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी होते हैं उनको गौड़ीय वैष्णव कहते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु गौड़ देश में प्रकट हुए, इसलिए जिस वैष्णव पंथ को उन्होंने शुरू किया उसको गौड़ीय वैष्णव कहते हैं। तो गौड़ीय वैष्णव भी मध्वाचार्य के संप्रदाय में आते हैं, लेकिन फिर भी ये एक अलग संप्रदाय सा माना जाता है। है वैसे चार संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय भी मध्व संप्रदाय का एक हिस्सा है, एक शाखा है उसकी, लेकिन फिर भी अपने आप में कभी कभी इस गौड़ीय वैष्णव शाखा को एक अलग सा संप्रदाय भी कहा जाता है। इसमें क्या विशेष बात है कि चैतन्य महाप्रभु ने हर एक संप्रदाय से दो दो विशेष बातें ली और मध्व संप्रदाय से भी दो बातें ली, श्री संप्रदाय से दो बातें, रुद्र संप्रदाय से दो बातें और निम्बार्क संप्रदाय से दो बातें। इस तरह से आठ पॉइंट बनाकर उन्होंने गौड़ी संप्रदाय बनाया। जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं वो गौड़ीय वैष्णव कहलाते हैं, इसलिए कि वो चैतन्य महाप्रभु ने दिए हुए सिद्धांतों के अनुसार भक्ति करते हैं। लेकिन महत्व की बात यह है कि जिन सिद्धांतों के ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने यह गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की शुरुआत की, उन सिद्धांतों को वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने आरंभ नहीं की थी। उनके पहले ईश्वरपुरी महाराज थे और उनके पुले पहले माधवेंद्रपुरी। तो वास्तव में देखा जाए तो तो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की का आरंभ हुआ माधवेंद्रपुरी से, और माधवेंद्रपुरी के पद चिन्हों में चले चैतन्य महाप्रभु। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हालांकि इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के शुरुआत करने वाले हैं, फिर भी अगर मूल दृष्टि से देखा जाए तो शुरुआत करने वाले हैं माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी ने ऐसे कौन से सिद्धांत स्थापित किए जो कि मध्व संप्रदाय से अलग थे? सबसे पहली बात, मध्व संप्रदाय में उस समय और काफी हद तक आज भी रीति रिवाजों में, रिचुअल्स में जो विधि विधान होते हैं उनमें बहुत ज्यादा जोर देते हैं। आप में से जो उडुपी गए हैं, जाते हैं, हालांकि वो बहुत सख्ती से वैष्णव नियमों का पालन करते हैं, लेकिन बहुत अधिक जोर देते हैं नियमों के ऊपर और रीति रिवाजों के ऊपर। और माधवेंद्रपुरी ऐसे पहले वैष्णव आचार्य थे मध्व संप्रदाय में जिन्होंने कि शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट किए, बाहरी रूप से भी प्रकट हुए वो। बाकी जो वैष्णव आचार्य तब तक रहे थे लक्ष्मीपति तीर्थ महाराज तक, वो अच्छी तरह से श्री कृष्ण की सेवा कर रहे थे उडुपी में, शास्त्रों का अध्ययन चल रहा था, पूजा पाठ चल रहा था, प्रामाणिक सन्यासी, प्रामाणिक भक्त थे, लेकिन फिर भी प्रेमा भक्ति और भाव का प्रकट होना ये पहली बार माधवेंद्रपुरी से आरंभ हुआ। तो ये पहला एक अंतर है। दूसरी बात ये है कि मध्व संप्रदाय में राधा रानी को मानते नहीं थे और आज भी मानते नहीं हैं। वो राधा रानी को केवल एक गोपस्त्री मानते हैं कि ये गोपी है जैसे दूसरे गोपियां हैं, जैसे दूसरे ब्रजवासी हैं, वो सब भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं बस। लेकिन राधा रानी कौन है, उनका विशेष स्थान क्या है, वो उनको नहीं, वो उसमें विश्वास नहीं करते कि राधा रानी मूल लक्ष्मी देवी है, उनसे ही सारे लक्ष्मी देवी आती हैं, ये नहीं मालूम। वो लक्ष्मी को मानते हैं, नारायण को मानते हैं, लेकिन राधा को नहीं मानते। तो मध्व संप्रदाय में पहली बार माधवेंद्रपुरी ने ही श्रीमती राधा रानी की भक्ति और आराधना आरंभ की। लेकिन उडुपी में आज भी ये राधा रानी की आप उपासना नहीं होती है। तो राधा कृष्ण की पूजा केवल माधवेंद्रपुरी करते थे और उनके बाद में ईश्वरपुरी और फिर चैतन्य महाप्रभु ने भी यही उनके ही पद चिन्हों में वो चले। तो ये दूसरी बात थी। तीसरा अंतर जो कि माधवेंद्रपुरी और मध्व संप्रदाय के भक्ति में अंतर है वो ये है कि माधवेंद्रपुरी भगवान श्री कृष्ण की सेवा, उपासना और भक्ति ब्रज भाव में करते थे। वो कृष्ण को श्याम सुंदर और गोविंद के रूप में, गोपालक, बांसुरी बजाने वाले गोपियों, राधिका रमण, गोपियों के संग रासलीला करने वाले, इस रूप में वो उपासना करते थे, सेवा करते थे, चिंतन मनन करते थे। लेकिन मध्व संप्रदाय में हालांकि उनके इष्ट देव बालकृष्ण हैं, कृष्ण हैं, लेकिन फिर भी वो कृष्ण वास्तव में नारायण स्वरूप है, नारायण के वो उपासक है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं वो है। वैसे कोई अंतर नहीं नारायण और कृष्ण में एक दृष्टि से देखा जाए तो, लेकिन फिर भी है अचिंत्य भेदा भेद तत्व। रस में बहुत अंतर होता है, गुणों में बहुत अंतर होता है, तत्व में दोनों एक है, नारायण और कृष्ण। तो इस तरह से उनकी जो उपासना है वो नारायण की मुख्य तरह से है। चौथा अंतर जो कि एक माधवेंद्रपुरी और मध्व संप्रदाय के आचार्यों में था वो ये है कि केवल माधवेंद्रपुरी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ब्रज भाव में ही नहीं कर रहे थे, लेकिन ब्रज भाव में भी जो कई प्रकार के रस हैं उनमें से माधुरी रस में सेवा करते थे। वृंदावन में भी जो कृष्ण की भक्ति होती है अलग अलग रसों में होती है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं कि हम भगवान की सेवा अलग अलग रसों में या अलग अलग भावों में कर सकते हैं। कितने रस हैं कुल मिलाकर? पांच नहीं, नहीं, कुल मिलाकर कितने रस हैं? बारह हैं। पांच प्रमुख रस और सात गौण रस, इनके बारे में कभी और भक्ति रसामृत सिंधु के बारे में जब चर्चा हो रही है होगी तो उस समय चर्चा करेंगे। लेकिन इन पांच प्रमुख रसों में से शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुरी रस और या श्रृंगार रस, तो ये श्रृंगार रस या माधुरी रस सबसे ऊंचा रस माना जाता है। हालांकि पांचों रसों में जो भी भक्त रहते हैं वो अपने अंदर ही अंदर संतुष्ट रहते हैं, उनको किसी चीज का अभाव नहीं महसूस होता, उनको ये नहीं लगता कि मैं दूसरे रस में भक्ति करने वाले से कुछ कम हूं या मुझे कुछ कम आनंद मिल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो जो माधुर्य रस है उसका मिठास, उसका माधुर्य बहुत अधिक है, इसलिए उसको माधुर्य रस कहते हैं। शांत रस और दास रस में केवल एक ऐश्वर्य की भावना रहती है कि भगवान कितने महान हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। सख्य रस में भगवान को मित्र मानते हैं, वात्सल्य रस में भगवान को अपना पुत्र बच्चा मानते हैं, लेकिन माधुरी रस में भगवान को अपना प्रेमी मानते हैं। तो ये विशेष भावना कि भगवान को अपना प्रेमी मानना या पति मानना, ये भावना मधु संप्रदाय में नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा ऐश्वर्य में भगवान की पूजा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की सेवा होती है तो वो तो ऐश्वर्य में सेवा होती है, और कृष्ण की सेवा होती भी हो तो बाल कृष्ण की, तो ज्यादा से ज्यादा वात्सल्य की, लेकिन माधुर्य भाव नहीं था। तो माधवेंद्र पुरी ने यह पहली बार मध्वाचार्य संप्रदाय में यह माधुर्य रस की भक्ति आरंभ की। और आखिरी बात, पांचवा जो अंतर माधवेंद्र पुरी की भक्ति में और मध्वाचार्य की भक्ति में, वो ये था कि माधुर्य रस में भी दो प्रकार की सेवाएं होती हैं, वो कौन से हैं? विप्रलंब और संभोग। संभोग मतलब जो मिलन में सेवा की जाती है, और विप्रलंब मतलब जो विरह में की जाती है। इसके बारे में कल हम चर्चा कर रहे थे। तो माधवेंद्र पुरी किस भाव में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते थे? विप्रलंब में, अर्थात विरह की भावना में। माधुरी रस का विभाजन और एक तरीके से भी किया जा सकता है। माधुरी रस स्वकीय रस में हो सकता है और परकीय रस में भी हो सकता है। स्वकीय रस क्या होता है? जब हम श्री कृष्ण को विवाहित रूप में प्रेम करते हैं, जैसे द्वारका की पठरानियां कृष्ण से प्रेम करती थी माधुरी रस में, लेकिन विवाह के भीतर विवाहित अवस्था में, ऐसे विवाहित अवस्था में प्रेम करना संसार के नीति रिवाज में बैठ जाता है। लेकिन जो वृंदावन का प्रेम है गोपियों का कृष्ण के प्रति, उसको परकीय रस कहते हैं, क्योंकि वो विवाह के बाहर है और संसार के नीति के दृष्टि से बैठता नहीं है। और लेकिन ये सबसे ऊंचा प्रेम माना जाता है। जितना ऊंचा ये प्रेम है, जितना मधुर है, उतना ये आवश्यक है कि इसकी नकल हम संसार में नहीं करें। तो ये सबसे ऊंचा प्रेम माना जाता है परकीय रस। गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति एकदम शुद्ध है, इसकी तुलना संसार के किसी भी प्रेम से, तथाकथित प्रेम से नहीं किया जा सकता। तो माधवेंद्र पुरी विप्रलंब सेवा तो कर ही रहे थे, लेकिन परकीय रस में। तो इसी भाव को चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया, खुद राधा रानी के रूप में राधा रानी के भाव को स्वीकार करके आए थे। तो ये मध्व संप्रदाय में तो बिल्कुल था नहीं। इसलिए ये पांच जो पॉइंट्स हैं, इसको आगे चलाते गए माधवेंद्रपुरी, इनके पद चिन्ह में आए ईश्वरपुरी और ऐसे गौड़ी संप्रदाय बनी। तो गौड़ी संप्रदाय जो है इन सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। आराध्य भगवान व्रजेश तनयस तद धाम वृंदावनम, रम्या काचित उपासना व्रजवधू वर्गेन वा कल्पिता, श्रीमद भागवतम प्रमाणममलम प्रेम पुमार्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभु और मतमिदम तत्रादर न परह। इन सिद्धांतों के ऊपर गौड़ीय संप्रदाय आधारित है और इन सिद्धांतों की स्थापना मूल रूप से सबसे पहले स्थापित किया माधवेंद्र पुरी ने। ये क्या सिद्धांत है? पहली बात, आराध्य भगवान व्रजेश तनयस्त। हमारे आराध्य भगवान कौन है? व्रजेश मतलब वृंदावन के ईश्वर, मतलब नंद महाराज के तनय, उनके पुत्र वृंदावन कृष्ण हमारे आराध्य देव हैं। और उनका धाम क्या है? वैकुंठ नहीं, अयोध्या नहीं, द्वारका नहीं, मथुरा नहीं, वृंदावनम। तद धाम वृंदावनम। रम्या काचित उपासना, सबसे मधुर प्रेम, सबसे ऊंची भक्ति किनकी थी? व्रज वधु वर्गेन वा, जो वृंदावन के व्रज वधु हैं, गोपियां हैं, वो उनका प्रेम सबसे ऊंचा प्रेम है। और इस इन बातों के लिए प्रमाण कौन सा है हमारे पास? किस आधार पे हम ये सब घोषणा कर रहे हैं? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, ये अमल प्रमाण है हमारे लिए, इससे ऊंचा कोई प्रमाण नहीं है। और इससे हमें कौन से उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है? प्रेमा, कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम के ऊपर मध्व संप्रदाय में इतना जोर नहीं दिया जाता है, भाव भक्ति के भी ऊपर है कृष्ण प्रेम। और यह है मत चैतन्य महाप्रभु का, जिसके लिए हमें पूरा पूरा आदर है, ऐसा ये श्लोक कहता है। तो ये है माधवेंद्रपुरी के सिद्धांत। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि माधवेंद्रपुरी ने जो किया है वो सारे बुनियाद बना दी उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय के लिए, जो कि इतने हजारों सालों तक और आगे चलने वाली है। इसलिए बताया जाता है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि माधवेंद्रपुरी एक बीज के बराबर है और चैतन्य महाप्रभु वृक्ष के बराबर है। माधवेंद्रपुरी आए, उन्होंने कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम का बीज बो दिया और उस बीज बोने के बाद में एक बहुत शक्तिशाली वृक्ष बना, जिस वृक्ष का नाम है चैतन्य महाप्रभु। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेमपुर भक्ति कल्प तरु तेनो प्रथम अंकुर। सबसे पहली बात वो बताते हैं कि माधवेंद्रपुरी भक्ति के सागर थे, कृष्ण प्रेम के सागर थे और उनके अंदर ये सारे भक्ति के लक्षण प्रकट हुए, इसलिए वो कृष्ण प्रेम के प्रथम अंकुर थे, बीज रूप में वो आए हैं और इस रूप को बड़े होकर चैतन्य महाप्रभु का रूप आ गया। जैसे ज्यादा अंकुर फूल गया, उसका विकास हुआ, ईश्वरपुरी बने और फिर आगे चल के चैतन्य महाप्रभु। तो इस तरह से माधवेंद्रपुरी ने परंपरा को भी आगे बढ़ाया, उनके कई शिष्य हुए, उनके कई सन्यासी शिष्य भी थे, गृहस्थ शिष्य भी थे। गृहस्थ शिष्यों में से उनके सबसे प्रिय थे अद्वैत आचार्य। किस प्रकार से अद्वैत आचार्य की दीक्षा हुई और किस तरह से अद्वैत आचार्य ने माधवेंद्रपुरी का आविर्भाव दिवस मनाया, ये हम कल सुनेंगे। और सन्यासी शिष्यों में उनके दो सबसे प्रिय थे, ईश्वरपुरी और परमानंदपुरी। ईश्वरपुरी ने किस तरह से अपने गुरु की सेवा की, माधवेंद्रपुरी की सेवा की, यह भी हम कल सुनेंगे। लेकिन थोड़ी बहुत चर्चा परमानंदपुरी के बारे में करेंगे दो शब्दों में, क्योंकि वृक्ष की पहचान फलों से होती है, उसी तरह से गुरु की पहचान अपने शिष्यों से होती है। तो गुरु का गौरव करना है तो शिष्यों का गौरव करना आवश्यक होता है। तो परमानंदपुरी के बारे में दो शब्दों में चर्चा करते हैं। परमानंदपुरी भी भगवान के एक नित्य पार्षद भक्त थे, वो भी सन्यासी थे जिस तरह से स्वरूप दामोदर थे, और दोनों स्वरूप दामोदर और परमानंदपुरी माधवेंद्रपुरी को बहुत प्रिय थे, अपना प्राण मानते थे उनको। और जब चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती से संन्यास लिया तो उनको जो संन्यास दंडा है वो परमानंदपुरी ने दिया था। और परमानंदपुरी हमेशा चैतन्य महाप्रभु के साथ में जगन्नाथपुरी में रहते थे और लीला में शामिल होते थे। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि मैं तो केवल परमानंद पुरी की वजह से ही संसार में टिका हुआ हूं, क्योंकि इतने आदर्श भक्त हैं, उनका व्यवहार इतना आदर्श है कि इन्हीं की वजह से मैं यहां ठहरा हुआ हूं। और वो कहते थे कि जब मैं परमानंद पुरी को देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये मेरी आंखों की पूर्णता है, मेरे धार्मिक कार्यों की पूर्णता है, मेरे सारे संन्यास आश्रम ग्रहण करने की जो कारण है उसकी पूर्णता है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि साक्षात माधवेंद्रपुरी मेरे सामने प्रकट हुए हैं परमानंदपुरी के रूप में। अर्थात ये परमानंदपुरी का भी गौरव है, माधवेंद्रपुरी का भी गौरव है, क्यों? परमानंदपुरी इतने अच्छे भक्त थे कि वो साक्षात अपने गुरु उनके सामने नजर आते थे। माधवेंद्रपुरी ने जो भक्ति के लक्षण प्रकट किए, ऐसे ही परमानंदपुरी भी थे। वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लगे रहते थे। वास्तव में कृष्ण लीला में वो उद्धव है। उद्धव ने चैतन्य लीला में भूमिका निभाई परमानंद पुरी के। परमानंद पुरी ने अपनी कुटिया बनाई जगन्नाथपुरी के पश्चिम दिशा में, आश्रम बनाया वहां, और वहां पे उन्होंने कुआं खोद दिया। लेकिन उस कुएं में जो पानी था वो थोड़ा कड़वा था, तो चैतन्य महाप्रभु को जब ये पता चला कि परमानंद पुरी के कुएं में पानी कड़वा है, तो उन्होंने एक वरदान दिया कि आज से परमानंदपुरी के कुएं में जो जल है वो गंगा जल बन जाएगा और बहुत मीठा होगा, और इस जल का पान जो करेगा या स्नान जो करेगा उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये खुद साक्षात गंगा जल हो जाएगा। और वास्तव में जब चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे कहा तो पानी मीठा बन गया, गंगा जल साक्षात हो गया। और आज भी जो भक्त लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं, सो वैष्णव जाते हैं, तो अलग अलग तीन स्थानों में भ्रमण करते हैं जगन्नाथपुरी के अंदर और आसपास, तो परमानंदपुरी के कुएं में से अवश्य जल पान करते हैं और थोड़े अपने ऊपर भी छिड़क लेते हैं जल। तो इस तरह से परमानंदपुरी ये भी माधवेंद्रपुरी के प्रमुख शिष्यों में से थे। माधवेंद्रपुरी के और भी शिष्य थे, और उनमें से एक दो शिष्यों का वर्णन आज हम करेंगे। वैसे जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात भ्रमण कर रहे थे तो भ्रमण करते करते वो मथुरा पहुंच आए। मथुरा में उन्होंने सबसे पहले विश्राम घाट में स्नान किया और फिर वो केशव जी के मंदिर में गए। वहां पास में कृष्ण जन्मस्थली है, तो जन्मस्थली में गए, भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थली देखी, केशव जी मंदिर में आए। उस समय केशव जी मंदिर जो था उसको तोड़ दिया था औरंगजेब ने, और बाद में तोड़ दिया था उसको, और फिर औरंगजेब ने वहां एक बहुत बड़ा मस्जिद बनाया जानबूझकर, जिसकी तुलना में मंदिर बहुत छोटा लगे। ये तो चैतन्य महाप्रभु के बाद में हुआ, लेकिन फिर थोड़े कृष्ण भक्तों ने मिलकर वहां और भी इतना बड़ा मंदिर बनाया कि वो मस्जिद से भी बड़ा मंदिर हो जाए, क्योंकि औरंगजेब ने ऐसे कर दिया था जानबूझ के। तो फिर थोड़े मारवाड़ी समाज के भक्त थे, उन्होंने मिलकर केशव जी मंदिर को बहुत बड़ा बना दिया। आज हम जाते हैं तो वो बड़ा मंदिर नजर आता वहां पे। तो चैतन्य महाप्रभु वहां केशव जी मंदिर में गए और भगवान का दर्शन किया, और फिर बहुत नृत्य करने लगे, कीर्तन करने लगे, हरी हरी बोलने लगे, और वहां सारे जो भी लोग थे विस्मित हो गए देखकर चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन, उनका नृत्य और उनके भक्ति भाव को देखकर। और जैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते थे हरि बोल हरि बोल, तो एक कोलाहल समझ गया सारे समाज में, सारे लोगों में जो इकट्ठे हुए थे वहां, सभी लोग हरि 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 कृष्ण कहने लगे। और उन लोगों में से एक ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण आए तुरंत चैतन्य महाप्रभु को चरण कमलों का स्पर्श किया, उन्होंने अपना सर का भी स्पर्श किया, और चैतन्य महाप्रभु के संग वो भी कीर्तन और नृत्य उसी भाव भक्ति में करने लगे। बहुत लंबे समय तक दोनों हरि कृष्ण का उच्चारण करते रहे, और ऐसे सारे लोगों को भी कीर्तन में भाव विभोर कर दिया उन्होंने। ऐसे लंबे समय तक कीर्तन चला। उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को एक अलग से ले गए और उनको अलग बिठाया और पूछा, आर्य सरल तुम्हें वृद्ध ब्राह्मण, आप आर्य हो, सज्जन हो और ऐसे आपकी उम्र भी बहुत ज्यादा है, तो कहां तुम्हें पायनो ऐसा प्रेम धन, आपने ऐसा प्रेम धन कहां से पाया है, इसका राज क्या है? तो वो भक्त ने बताया, उस ब्राह्मण ने बताया कि वास्तव में बहुत साल पहले यहां माधवेंद्रपुरी नाम के सन्यासी आए थे, महान वैष्णव, महाभागवत भक्त भगवान के, वो मथुरा में आए थे। मेरा सौभाग्य हुआ उनका दर्शन करने के लिए, तो मैंने उनको निमंत्रण किया मेरे घर में। वो आए, मेरे ऊपर उन्होंने बहुत कृपा की, मुझे शिष्य स्वीकार किया और इतना ही नहीं, मेरे घर में उन्होंने प्रसाद का सेवन भी किया और इस तरह से मुझे उन्होंने उनके शरण मुझे दे दिया उन्होंने। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना कि ये ब्राह्मण माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, तो तुरंत दंडवत प्रणाम किया उनको और कहने लगे, तो आप तो मेरे गुरु तुल्य हैं, इसलिए मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं, इसलिए आप मेरे लिए गुरु तुल्य, इसलिए कि मैं आप प्रणाम करना मेरे लिए उचित है आपको। तो जब वो ब्राह्मण ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु उनके सामने दंडवत कर रहे हैं, तो घबरा गए, तुरंत उन्होंने भी दंडवत प्रणाम कर दिया। और उस समय उन्होंने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप ऐसा मत करिए, आप मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं, आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता। तो फिर से ब्राह्मण घबरा गए, बोलने लगे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप तो सन्यासी हैं, तो आपकी जो भक्ति के लक्षण प्रकट हो रहे हैं, इससे मुझे पता चल रहा है कि जिस तरह से मेरा संबंध माधवेंद्रपुरी से है, आपका भी अवश्य किसी न किसी तरह से माधवेंद्रपुरी से संबंध है। अगर नहीं होता तो ऐसे शुद्ध भक्ति के लक्षण आप कैसे प्रकट करते? जहां किसी व्यक्ति का माधवेंद्रपुरी का संबंध नहीं होता, ऐसे भक्ति के लक्षणों का गंध भी वहां पर नहीं आ सकता, और आप ऐसे लक्षण प्रकट कर रहे हैं, तो इससे मैं जान सकता हूं कि संबंध माधवेंद्रपुरी के साथ अवश्य है। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु के संग उनके एक सेवक थे, भक्त थे, बलभद्र भट्टाचार्य, तो उन्होंने ईश्वरपुरी को बताया, उन्होंने उस ब्राह्मण को बताया कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से दीक्षा ली है और ईश्वरपुरी आपके गुरु भाई है। तो उस समय इतने आनंद से नाचने लगे ब्राह्मण कि ये भी माधवेंद्रपुरी से संबंधित इनके ही परम शिष्य है, ये ईश्वरपुरी मेरे गुरु भाई ईश्वरपुरी के शिष्य है, ये कीर्तन और नृत्य करने लगे। और उस समय चैतन्य महाप्रभु ने उनसे आलिंगन किया, दोनों के आंखों से आंसू बहने लगे, एक दूसरे को आलिंगन करते रहे बार बार। और उस समय उस ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया कि आप भी मेरे घर में आइए, और घर में बुलाकर उनको नाना प्रकार की सेवा की चैतन्य महाप्रभु की। और फिर उस ब्राह्मण ने बलभद्र भट्टाचार्य से कहा कि ये रहे सारे तरकारी, जो भी सब्जियां, अन्न जो भी है, दूध है, सब कुछ है, अभी आप एक बढ़िया दावत बनाइए चैतन्य महाप्रभु के लिए। अभी मन में प्रश्न यह आ सकता है कि ब्राह्मण ने ऐसा क्यों कहा, ब्राह्मण ने खुद क्यों नहीं पका के खिलाया चैतन्य महाप्रभु को, वैसे तो ब्राह्मण थे। इसके बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि ये जो ब्राह्मण थे, ये सनोड़िया ब्राह्मण थे। सनोड़िया ब्राह्मण मतलब कौन है, इसके लिए थोड़ा एक बैकग्राउंड है, इतिहास है कि उत्तर भारत में, खास करके उत्तर पश्चिम भारत में, वैश्य समाज जो होता है उनमें तीन भाग होते हैं, एक है अग्रवाल, दूसरे हैं कलवर और तीसरे हैं सानवर्ण। सही है राय प्रभु? हाँ, तो इन तीन प्रकार के वैश्य जो जाति हैं उत्तर दक्षिण भाग में, उनमें से जो अग्रवाल जाति है वो थोड़े प्रथम श्रेणी के वैश्य माने जाते हैं, और जो कलवर और ये जो सानवाड़ है वो थोड़े दूसरे श्रेणी के, निम्न श्रेणी के माने जाते हैं। तो जो वैश्यों को मार्गदर्शन करते हैं वो तो ब्राह्मण ही होते हैं, तो जो इन कलवार और जो शानवाड़ जाति के निम्न श्रेणी के जो वैश्य हैं उनको मार्गदर्शन करने वाले जो ब्राह्मण हैं उनको सनोड़िया ब्राह्मण कहते हैं। अर्थात वो ब्राह्मण जाति भी थोड़ी निम्न जाति की ब्राह्मण है। जो ऊपर के जाति के वैश्यों को मार्गदर्शन करने वाले ब्राह्मण थे उनको प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण माना जाता था, और जो निम्न श्रेणी के वैश्यों को मार्गदर्शन करने वाले हैं उनको द्वितीय श्रेणी के ब्राह्मण कहलाते थे। तो जो सनोड़िया ब्राह्मण हैं थे वो भी इस द्वितीय श्रेणी के ब्राह्मण थे, इसलिए सन्यासी उन लोगों के घर में खाया नहीं करते थे। तो देखिए प्राचीन भारत में इतने सारे सब न जाने कितने कितने जाति भेदभाव कितना होता था, तो इसीलिए सनोड़िया ब्राह्मण हिचकिचाए कि मैं ऐसे शुद्ध सन्यासी को और भक्त को, स्वयं भगवान है, कैसे मैं खिला सकता हूं। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि स्वयं आपके घर में माधवेंद्र पुरी ने प्रसाद का सेवन किया और आपने खुद उनको पका के खाया और उनको खिलाया। तो उन्होंने भगवत गीता का श्लोक कोट किया, यद यद आचरते श्रेष्ठ तत्त एवेतरो जन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तत् अनुवर्तते, कि जैसे महान लोग कार्य करते हैं उनके पद चिन्हों में जनसाधारण चलती है, जिस तरह से वो उदाहरण पेश करते हैं उसी उदाहरण का अनुसरण करते हैं जनसाधारण। तो कहने का तात्पर्य यह था कि चैतन्य महाप्रभु कहना चाहते थे जब स्वयं माधवेंद्र पुरी ने आपके घर में आपके हाथों का प्रसाद खाया है तो मैं कौन होता हूं इनकार करने के लिए। अगर माधवेंद्र पुरी ने आपको योग्य समझा शिष्य बनाने के लिए, आपके हाथों से खाने के लिए, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया कि आप आदर्श वैष्णव हैं, तो फिर मैं कौन होता हूं इसे उल्टा करने वाला। ये अंतर होता है वैष्णव में और स्मार्थों में। जो स्मार्थ लोग होते हैं वो ऐसे जाति के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, कौन ऊंच जाति का है, नीचे जाति का है, प्रथम श्रेणी, दूसरे श्रेणी, हाँ ये सब श्रेणियों में बहुत अटक जाते हैं स्मार्थ लोग। लेकिन वैष्णव जाति का भेदभाव नहीं करते हैं, वो जानते हैं कि ऊंच जाति का हो नीच जाति का हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सब शारीरिक है। वैष्णव आत्मा को देखता है, हृदय को देखता है। अगर कोई नीचे से नीचे परिवार का भी आदमी क्यों ना हो, अगर वो वैष्णव हो तो वैष्णव उसके हाथ का बनाया हुआ भोजन खाना स्वीकार करेंगे, न कि एक उच्च जाति का तथाकथित ब्राह्मण जिसके हृदय में कोई भक्ति नहीं है। तो ये सिद्धांत माधवेंद्र पुरी ने सिद्ध करके अपने जीवन से दिखाया। तो इस तरह से जब चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे कहा तो उस सनोड़िया ब्राह्मण वो कहने लगे कि आप तो नहीं केवल आदर्श सन्यासी हैं लेकिन आप साक्षात भगवान हैं, मैं आपको पहचान गया हूं। कोई लोग ऐसे हैं जो आपको मानते नहीं है, आपकी निंदा करेंगे वो, लेकिन मैं ऐसे निंदा को सहन नहीं करूंगा। और उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु ने महाभारत से युधिष्ठिर महाराज के कहे हुए श्लोक को दोहराया, तर्को अप्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना न सावृषि मतम न भिन्नम धर्म से तत्व निहितम गुहायम महाजनो ये न गतः सपंथा। उन्होंने कहा था कि तर्क अप्रतिष्ठा, तर्क करने से कभी भी धर्म को जान नहीं सकते, आध्यात्मिक जीवन को जान नहीं सकते, तर्क का कोई अंत नहीं है। अगर कोई समझेगा कि शास्त्रों का अध्ययन करने से मैं सब कुछ जान लूंगा तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि शास्त्र इतने हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि वेद इतने हैं, पुराण इतने हैं और ऋषिगण इतने हैं। कई बार ऐसे देखने में आता है कि इन तीनों में मतभेद हो जाता है, एक अमुक पुराण में कुछ एक आदेश है तो दूसरे कोई पुराण में या वेद में कुछ दूसरा आदेश है, और कोई ऋषि है वो तीसरा ही कुछ आदेश देते हैं। तो इतना मतभेद है कभी कभी पुराणों में, वेदों में, ऋषिगणों में। इसलिए श्रुतयो विभिन्न बताया जाता कि केवल शास्त्रों का अध्ययन करने से आप धर्म को नहीं जान सकते, नसाव ऋषिर यस्य मतम न भिन्नम, और जो मुनि है ऋषिगण होते हैं वो अपने आप को मुनि नहीं कहलाते जब तक कि वो ऐसे एक मत को प्रस्तुत नहीं करते जो कि दूसरे लोगों के मत से भिन्न है। अगर आपने कोई ऐसे मत प्रस्तुत किया है जिसका जो कि दूसरे लोग मानते हैं तो आप कोई अच्छे मुनि नहीं माने जाते। आपको कोई नई विचारधारा प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे कि आपको एक प्रामाणिक मुनि माना जाए। तो ऐसे मुनिगण आपस में जो है वो तर्क वितर्क करते रहते हैं, वाद विवाद करते रहते हैं। तो ऐसे वाद विवाद में तर्क में धर्म को नहीं जान सकते। इसीलिए मूल बात क्या है, धर्मस्य तत्वम, धर्म का तत्व जो है मूल कहां छुपा हुआ है, निहितम गुहायम, भक्तों के भगवान के शुद्ध भक्तों के गुह्य गुफे में अंदर हृदय में छुपा हुआ है। तो वहां से उसको निकालना है हमें। कैसे निकालना है, ऐसे शुद्ध भक्तों का संग करके, ऐसे शुद्ध भक्तों के पदचिन्हों में चल के। इसलिए उन्होंने बताया महाजनों ये न गतः सपंथा, जो उदाहरण वो दिखाते हैं उस उदाहरण के अनुसार उनसे हमें सीखना चाहिए, पदचिन्हों में चलना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। और इसलिए माधवेंद्रपुरी के बारे में उन्होंने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने, धर्म स्थापन हेतु साधु व्यवहार पूरी गोसाइर ये आचरण सही धर्मसार। वो कहने लगे कि धर्म के सिद्धांत साधु के व्यवहार से स्थापित होते हैं, सिद्ध होते हैं। धर्म क्या चीज है वो हम समझ सकते हैं प्रामाणिक साधु के व्यवहार से। देखिए कितनी सुंदर बात है, क्योंकि साधु हमारे सामने होते हैं। शास्त्रों को पढ़ने जाए कितने सारे शास्त्र, हम तो बिल्कुल भ्रमित हो सकते हैं शास्त्रों को पढ़ के, नहीं समझ पाएंगे हम इतने सारे शास्त्रों को। लेकिन साधु के व्यवहार से, प्रामाणिक साधु के, गांजा पीने वाले साधु नहीं, प्रामाणिक साधु भक्तों के व्यवहार से, उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि धर्म क्या है। धर्म स्थापना हेतु साधुर व्यवहार, तो साधु का व्यवहार जो है धर्म की स्थापना करता है। सुंदर बात है, देखिए बताते हैं और आगे क्या करते हैं, पूरी गोसाई व्यवहार यही धर्मसार। और माधवेंद्र पुरी जो है ऐसे एक आदर्श प्रामाणिक भक्त हैं कि उनका व्यवहार क्या सिद्ध करता है, धर्म का सार सिद्ध करता है। अगर आपको धर्म का सार जानना है तो माधवेंद्र पुरी के व्यवहार को देखिए आप। ये चैतन्य महाप्रभु बता रहे थे, कितनी गूढ़ बात है, कितनी सुंदर बात है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि माधवेंद्र पुरी जैसे आदर्श साधु और भक्त ने आपके घर में जाति का भेदभाव न करते हुए प्रसाद ग्रहण किया है, तो यह धर्म का सार है। क्योंकि आप वैष्णव हैं और माधवेंद्र पुरी ने इस बात को जान लिया है, इसलिए आपका वैष्णव होना यह ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके जाति ज्यादा महत्व नहीं रखता। तो इस तरह से माधवेंद्र पुरी ने इस बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक सिद्धांत की स्थापना की अपने व्यवहार से। इस बात को सिद्ध करने के लिए माधवेंद्र पुरी ने कोई बड़े भाषण नहीं दिए, प्रवचन नहीं दिए, लेकिन केवल उस सनोडिया ब्राह्मण को शिष्य बनाकर उसके घर में उसके हाथ का पकाया हुआ भोजन ग्रहण करके उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि प्रवचन में ये बातें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन माधवेंद्र पुरी ने दिखलाया अपने जीवन से। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्र पुरी का गुणगान किया और फिर सनोडिया ब्राह्मण के घर के बाहर आए और देखा कि हजारों की संख्या में मथुरा निवासी वहां उपस्थित हैं। कोलाहल मच गया उधर, क्योंकि सब जानते थे कि महाप्रभु आए हैं। कोई कह रहे हैं कि देखो ऐसा प्रेम तो अलौकिक है, कभी दिखने में नहीं आता, ये तो साक्षात श्री हरि होंगे जो कि मथुरा वासियों का उद्धार करने के लिए आए हैं, नहीं तो ऐसे भक्ति के लक्षण कोई साधारण जीव नहीं प्रकट कर सकता। तो सारे उनके दर्शन के लिए आए और चैतन्य महाप्रभु ने हरि हरि कहकर सबको संकीर्तन में शामिल करा दिया। इसके बाद में चैतन्य महाप्रभु तीर्थ यात्रा में गए, मथुरा के अलग अलग घाटों में गए, 24 घाट है मथुरा के, वहां गए तीर्थ यात्रा में और फिर वृंदावन के अलग अलग जंगलों में इत्यादि गए और साथ में इस सनोडिया ब्राह्मण को लेकर गए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि माधवेंद्रपुरी के शिष्य भी किस तरह से माधवेंद्रपुरी के गुण। और एक बार जब चैतन्य महाप्रभु भ्रमण में थे, अपनी यात्रा में थे संन्यास लेने के बाद, मध्य लीला की बात है, तो चलते चलते दक्षिण भारत से, जब उत्तर की ओर आ रहे थे तो वो आ पहुंचे पंढरपुर। पंढरपुर आकर उन्होंने विट्ठल देव का दर्शन किया, रुक्मिणी देवी और विट्ठल देव का दर्शन किया। बताया जाता है कि उन्होंने तुकाराम को भी, वास्तव में तुकाराम को स्वप्न में दर्शन उन्होंने दीक्षा दे दी थी, और इसलिए तुकाराम भी संकीर्तन के मार्ग में बहुत जोर दिया करते थे। तो खैर उस समय तो तुकाराम थे नहीं वहां, तो विट्ठल देव का दर्शन किया और एक ब्राह्मण ने उनको देखा कि ये इतने भक्ति भाव प्रकट कर रहे हैं, बहुत प्रभावित थे उनसे, और उस ब्राह्मण ने भी चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण किया अपने घर में प्रसाद के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद ग्रहण किया उनके घर में, और वहीं पर उन्होंने सुना कि माधवेंद्रपुरी के और एक शिष्य जिनका नाम है श्रीरंगपुरी, वो किसी और ब्राह्मण के घर में रुके हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत आनंद आया कि माधवेंद्रपुरी के शिष्य यहां पंढरपुर में है, तुरंत वहां पर गए उनके घर में। और जैसे ही उन्होंने श्रीरंगपुरी को देखा तो उनके शरीर में सारे भक्ति के विकार लक्षण प्रकट होने लगे, तुरंत उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। और जैसे ही श्रीरंगपुरी ने देखा चैतन्य महाप्रभु को दंडवत करते हुए, एक सन्यासी आए, वैष्णव सन्यासी, और मुझे दंडवत कर रहे हैं, और उसके शरीर में ऐसे कंपन स्वेद इत्यादि हो रहा है, भक्ति के लक्षण है, ये कोई बनावटी नकली नहीं है, वास्तव में सत्य है, तो उन्होंने कहा, श्रीपाद उठो उठो, आप कौन हो, और उनसे आलिंगन किया। और जैसे ही दोनों गोस्वामी ने आलिंगन किया तो दोनों के शरीर में और भी भक्ति के लक्षण प्रकट होने लगे, दोनों के आंखों से अश्रु धारा बहने लगी, और लंबे समय तक दोनों आलिंगन करते रहे एक दूसरे को। और उसके बाद में उन्होंने, श्रीरंगपुरी ने कहा, जिस तरह से सनुड़िया ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु से कहा था, उसी तरह से श्रीरंगपुरी ने भी, जो कि सन्यासी थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कहा, मुझे यह पूरा विश्वास है आपके भक्ति को देखकर कि आप कभी अवश्य कोई माधवेंद्रपुरी से संग है, कोई संबंध है, क्योंकि जहां माधवेंद्रपुरी का संग नहीं है वैसे प्रेमा भक्ति के लक्षण प्रकट हो नहीं सकते, इसका गंध भी नहीं आ सकता। तो जो शब्द सरोडिया ब्राह्मण ने किए थे वो श्रीरंगपुरी ने भी किए कि ऐसे भक्ति का गंध भी ऐसे जगह में नहीं आ सकता जहां माधवेंद्रपुरी का संबंध न हो। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि मैं ईश्वरपुरी का शिष्य हूं और नवद्वीप में मैंने उनसे, मैं नवद्वीप का रहने वाला था, नहीं, ईश्वरपुरी नवद्वीप के थे। तो इस तरह से जब नवद्वीप का नाम आया तो श्रीरंगपुरी ने कहा कि हाँ मुझे याद है, बहुत साल पहले मेरे गुरु महाराज श्रील माधवेंद्रपुरी के साथ में मैं भी नवद्वीप गया था। उस समय नवद्वीप एक बहुत शिक्षा के लिए, विद्या के लिए बहुत प्रमुख स्थल था, जैसे तक्षशिला, बाद में आकर तक्षशिला हुआ, नालंदा हुआ, तो इस तरह से उस समय ये नवद्वीप बहुत मशहूर था, बड़े बड़े विद्वान वहां आया करते थे, वहां शिक्षा चलती थी। तो माधवेंद्रपुरी और श्री रंगपुरी वहां आए हुए थे। तो श्री रंगपुरी ने कहा कि मुझे याद है कि नवद्वीप में जब हम गए थे तो वहां एक बहुत शुद्ध ब्राह्मण थे जिनका नाम था जगन्नाथ मिश्रा, और उनके घर में हम गए थे, और उनकी पत्नी, उनका नाम था शची देवी, और इतना प्रेम उनका था मानो कि वो चारे विश्व की माता है। और मुझे अभी तक याद है उनके घर में उन्होंने केले के फूलों से एक सब्जी बनाई थी, इतना स्वादिष्ट कि कभी मैं उसको भूल नहीं सकता, और वो ऐसे सन्यासियों को खिलाती थी मानो कि वो सन्यासी सारे उनके पुत्र हैं। और उनका एक बहुत योग्य पुत्र था शंकरारण्य, जिसने सन्यास लिया, और ये शंकरारण्य ने अपना प्राण त्याग दिया यहीं पंढरपुर में और भगवान के धाम में वो लौट गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने जवाब दिया कि मेरे पूर्वाश्रम में अर्थात संन्यास लेने के पहले, जगन्नाथ मिश्र मेरे ही पिता थे, सची माता मेरी माता थी और शंकरारण्य मेरे भाई थे। और जब यह सुना श्रीरंगपुरी ने तो और भी उनको आनंद हुआ और उनको फिर से आलिंगन किया। और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगपुरी के संग में 5-6 दिन रहे और दिन भर रात भर कृष्ण कथा चलती रही दोनों के बीच में। किसी को पता नहीं चला कि रात कब है, दिन कब है, खाना है, पीना है, सोना है, कुछ पता नहीं चला। कृष्ण कथा के लहरों में, सागर के लहरों में वो बहते गए 5-6 दिन। और फिर श्रीरंगपुरी पंडरपुर छोड़कर द्वारका की ओर चले। चैतन्य महाप्रभु 4 दिन और पंडरपुर में ठहरे और फिर अपनी यात्रा में वो भी आगे चल पड़े। इस तरह से हम देखते हैं कि माधवेंद्रपुरी के शिष्यगण भी वही गुण प्रकट करते थे जो कि उनके अंदर थे। तो शुद्ध भक्त जो होते हैं वो चिंतामणि की तरह होते हैं, जहां भी स्पर्श करते हैं उनको उनके अंदर भी वही गुण पैदा करा देते हैं। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी जैसे बने और फिर उनके भी शिष्य 6 गोस्वामी, स्वरूप, दामोदर इत्यादि, और ये गौड़ी वैष्णव परंपरा चलती आई। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे संप्रदाय में, ऐसे परंपरा में आने का एक अवसर मिला है। कितने भाग्यशाली हैं हम, इसका पूरा पूरा फायदा हमें उठाना चाहिए और माधवेंद्रपुरी की कृपा याचना करनी चाहिए कि हम भी उनके चरणों में एक रज की धूली बन जाएं। तो आज हमने चर्चा की माधवेंद्रपुरी के संप्रदाय की, उनके पहले जो आचार्य हुए, उनकी जो शिक्षा थी और उनके बाद में जो परंपरा चली, उसके बारे में संक्षेप में आज हमने चर्चा की। श्रील माधवेंद्रपुरी पाद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी इत्यादि?
हाँ, जो कि जैसे 4 संप्रदाय है उसमें जो भी जीव आते हैं, जो भी उसका अलग अलग, सब संप्रदाय के सिद्धांत भी अलग अलग होते हैं, कि उनको क्या वही भक्ति की सबको प्राप्ति होती है या सबका जो भाव होता है वो अलग अलग होता है?
अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग भाव होते हैं। जैसे श्री संप्रदाय में नारायण की भक्ति होती, विष्णु, रंगनाथ, श्री मतलब लक्ष्मी देवी, तो वह नारायण तो होने ही है। तो वहां नारायण वैकुंठ भाव में करते हैं, उनकी उनकी प्राप्ति वैकुंठ की होगी। मध्व संप्रदाय में भी लक्ष्मीपति तीर्थ तक, अर्थात माधवेंद्रपुरी के आने के पहले तक, वो भी नारायण स्वरूप में भक्ति करते हैं। हालांकि कृष्ण भक्त हैं वो लोग, फिर भी नारायण स्वरूप। पुष्टि मार्गी अर्थात वल्लभ संप्रदाय या विष्णु स्वामी संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, इसमें वात्सल्य भाव ज्यादा प्रमुख है। गोपाल जी की पूजा करते हैं, वात्सल्य भाव को ज्यादा महत्व देते हैं। और निम्बार्क संप्रदाय में राधा कृष्ण की पूजा भी करते हैं। तो गौड़ी संप्रदाय में जो है ये भी एक विशेष बात है। तो इसलिए हर एक संप्रदाय में जैसे जैसे आचार्य होते हैं, जैसे परंपरा चलती रहती है, उस भाव में भी शिष्यों को भक्ति करने का मौका मिल जाता है, उसी तरह की शिक्षा मिल जाती है। ठीक है, और कोई प्रश्न?
हम देखते हैं कि इस्कॉन में या इधर किधर जब जाते हैं तब जो सन्यासी रहते हैं वो अपने चरण कमल को स्पर्श करने को नहीं देते, लेकिन पहले तो हम देखे कि वो जब उनको चरण जाते हैं तो चरण कमल स्पर्श करने को देते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु या माधवेंद्रपुरी और ईश्वरपुरी को चरण स्पर्श करने को दे देते।
ये कहां पढ़ा आपने? हमने तो ऐसे नहीं कहा।
आपने कहा नहीं है, पर जब जाते हैं तब वो उनको चरण स्पर्श करके उनको ये मानते थे अपना जीवन का वो है।
कभी कभी, लेकिन महाप्रभु भी बहुत स्ट्रिक्ट थे इसके बारे में, दूर से ही सर। हाँ, कभी कभी जबरदस्ती पकड़ लेते थे, वो दूसरी बात है, लेकिन प्राय ऐसे होता नहीं था। और खास करके अवैष्णवों से छूने नहीं देते थे ऐसे ना, तो कोई इसमें ज्यादा कोई उल्लेख नहीं है शास्त्र में कि छूने देते थे। ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि पैर छूने से सामने वाले का कर्म हमारे ऊपर आ जाता है पूरा। तो सारे अवैष्णव आए पैर छूने लगे तो सारा उनका पाप जो है अपने इसमें आ गया। तो इसलिए कई बार भक्त लोग ये भी बोलते हैं कि कोई पैर छू भी लेता है तो उसका सर छूल होता है, करंट होकर पूरा उसको लौट जाए वापस, उसने जो दिया वो उसको लौटा देना वापस, साथ साथ अपने अंदर जो भी है वो भी चले जाए। इसलिए भक्तों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और हम देखते हैं कि दूसरे भी वैष्णवों को पैर छूते तो उनको भी थोड़ा समझाना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए लेकिन समझाना चाहिए कि ऐसा दूर से ही आप प्रणाम करो।
जब एक तो दूसरा भक्तों को जब चरण स्पर्श करके ये करते तो सही है या सही नहीं है?
अभी कभी कभार किया तो ठीक है वैष्णव, लेकिन वो भी पब्लिक में नहीं और ऐसे तमाशा के रूप में नहीं। प्राइवेट में एक आध बार आपस में उनकी लीला चल रही हो तो अलग बात है। ठीक है। और
हरे कृष्णा, प्रश्न नहीं है। जब पिछली बार जगन्नाथपुरी गए थे तो राधा महाराज ने स्वयं अपने हाथ से वहां परमानंदपुरी जी के स्थान पर जो है कुएं से पानी भर भर के सबको स्नान करवाया था, सबको जितने भी भक्त थे,
हर बार होता है,
सब आत्मविभोर हो गए थे सबके सब।
सर है, जैसे कि आपने कहा कि शास्त्रों का जो धर्म का जो गुह्य ज्ञान है उसके बारे में भी अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग कथन है, ऐसा क्यों है? हम पढ़ने के बाद उसको समझ नहीं पाते हैं, ऐसा क्यों है?
क्योंकि अलग अलग वृत्ति के लोग होते हैं जिनको अलग अलग तरह के शास्त्र चाहिए। जैसे जिसकी मेंटालिटी जिसकी वृत्ति है उस हिसाब से उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए श्रद्धा उसको उस मार्ग में बढ़ाने के लिए वैसे शास्त्र हैं। आपको क्या चाहिए? इंद्र तृप्ति चाहिए, इंद्र तृप्ति अलग अलग सुंदर सुंदर ढंग से करने के लिए आपके लिए शास्त्र हैं। आपको क्या चाहिए? देवी देवताओं की पूजा चाहिए, बहुत सारे शास्त्र हैं जिनको आपको अच्छी तरह से समझाएंगे कैसे देवी देवताओं की पूजा करना। आपको क्या चाहिए? निराकार की उपासना करनी है तो निराकार की उपासना करने के लिए शब्दों का तोड़ मोड़ करके कैसे उनको निराकार की ओर चलना है वो भी, उसके लिए भी शास्त्र है। अगर आपको शुद्ध भक्ति करनी है उसके लिए भी शास्त्र है। आपको मांस खाना है उसके लिए भी शास्त्र, हर एक चीज के लिए शास्त्र है। इसलिए वेद ये एक विशाल घर है, इसमें हर प्रकार के लोग रह सकते हैं, शराबी से लेकर शुद्ध भक्त तक। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो इन सारे शास्त्रों के सार को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए ऐसे भक्तों के व्यवहार में ही धर्म का सार है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया। ना तो ऐसे ही सारे शास्त्रों को देखकर तो भ्रमित ही हो जाएंगे व्यक्ति, और होते भी हैं। इसलिए जो प्रामाणिक भक्त का संग नहीं करते या सही संप्रदाय में परंपरा में नहीं आते वो कभी भी समझ नहीं सकते कि शास्त्रों का सार क्या है। इसलिए महाजनों ये न कथा सपन था, दूसरा कोई और मार्ग नहीं है धर्म को समझने के लिए, भक्ति करने के लिए। ऐसे कई लोग हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं और भावना भी अच्छी होती है, लेकिन उनके प्रामाणिक परंपरा नहीं है, इसलिए सही दिशा में उनकी प्रगति नहीं हो पाएगी। कोई ना कोई सिद्धांत की मिलावट हो जाएगी, भ्रमित हो जाएंगे, कुछ न कुछ अपने मनगढ़ंत ढंग से कुछ करेंगे। जब तक कि प्रामाणिक परंपरा नहीं मिलती तब तक स्थिरता से हम एक दिशा में सही दिशा में आगे भक्ति में नहीं बढ़ पाएंगे, सही सिद्धांत हमारे नहीं होंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न है?
कहा कि मध्व संप्रदाय में जो राजा रानी को नहीं मानते, एक सखी मानते, लेकिन शास्त्रों में तो उल्लेख है राजा रानी कौन है उसके बारे में उल्लेख है, तो फिर भी ऐसा क्यों नहीं मानते?
अलग अलग भाव है। जैसे वो चैतन्य महाप्रभु को भी नहीं मानते हैं, सन्यासी मानते हैं, महान शुद्ध भक्त मानते हैं, लेकिन परम भगवान है वो नहीं मानते। इसलिए शास्त्रों में तो बताया हुआ है, तो हम एक शास्त्र प्रस्तुत करेंगे तो दूसरा कोई कह सकते नहीं इसका अर्थ ऐसा है, और हम दूसरा श्लोक सामने रखेंगे तो बोल नहीं नहीं इसका अर्थ ऐसा नहीं वैसा है। तो अलग अलग ढंग से लोग देख सकते हैं। तो अलग संप्रदाय में अपनी अपनी भाव से भक्ति होती है। कभी कभी ऐसे शास्त्र होते हैं वो कहते हैं कि हम इन शास्त्रों को मानते ही नहीं है, ऐसा भी है। तो इसलिए हमें महाचलो ये नहीं कहता सपन, तो वो अपने जगह में ठीक है, उनकी भक्ति उस भाव में चल रही है, वो भी ठीक है, प्रामाणिक है, चलना है उनको, लेकिन वो वैकुंठ की प्राप्ति करेंगे, गोलोक वृंदावन की प्राप्ति नहीं कर सकते, माधुर्य रस में प्रवेश नहीं कर सकते, ना ही गोलोक के रस में नहीं प्रवेश कर सकते। ठीक है, पीछे माइक।
माधवेंद्रपुरी ने हर संप्रदाय से दो दो पॉइंट्स कौन से निकाले थे?
माधवेंद्रपुरी ने नहीं, चैतन्य महा, देखे याद है कि नहीं, रामानुज संप्रदाय से उन्होंने एक ली थी, भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भर होना, और दूसरी बात शुद्ध भक्ति का सिद्धांत, जो कर्म मिश्र न हो ज्ञान मिश्र न हो, ये दो बातें रामानुज संप्रदाय अर्थात श्री संप्रदाय से लिए, बहुत पहले पढ़ा, देखते हैं। मध्व संप्रदाय से दो बातें ली, एक मायावाद का खंडन और दूसरा श्री विग्रह को भगवान से अभिन्न समझना। फिर जो वल्लभाचार्य की संप्रदाय है अर्थात विष्णु स्वामी संप्रदाय, उसमें उन्होंने स्वीकार किया रागानुगा, मतलब एक बहुत स्वाभाविक तौर से भगवान की भक्ति करना जो कि रीत रिवाजों से ऊपर है। दूसरी बात अभी याद नहीं आ रही है, वो बताएंगे। और निम्बार्क संप्रदाय में उन्होंने स्वीकार किया गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति, और दूसरी बात कि राधा रानी का प्रेम सबसे श्रेष्ठ है। तो ये आठ सिद्धांत उन्होंने लिए, दो 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 अलग अलग चार संप्रदायों से, और ऐसे उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय का आधार है, उसकी बुनियाद बनाई। ठीक है, ये वर्णन आता है भक्ति विनोद ठाकुर के किताब नवद्वीप महात्म्य में, तो आप में से जो किताब पढ़ना चाहेंगे पढ़ सकते हैं, ये आठ पॉइंट उसमें आते हैं।
ने कई भक्तों को दीक्षा दी, तो उनमें से मध्वाचार्य भी है, तो और भी कहीं आचार्य थे तो उनका भी संप्रदाय होगा।
नारद मुनि ने व्यासदेव को दीक्षा दी, व्यासदेव ने आगे चल के,
व्यासदेव ने तो कई लोगों को दीक्षा दी, तो उनमें से मध्वाचार्य भी है, तो और भी संप्रदाय होंगे?
अवश्य है, अवश्य। ये हमारी संप्रदाय, जिस संप्रदाय में हम आ रहे हैं इसका उल्लेख है, और अलग अलग संप्रदाय की शाखाएं आगे बढ़ती चली हैं, जैसे पेड़ की शाखाएं होती, कितने सारे आगे होते 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 रहते हैं, लेकिन कितने बचर हैं अभी वो देखने की बात है। ये परंपरा बची हुई है और अभी बहुत स्वास्थ्य अच्छा है, और फल भी मीठे मीठे आ रहे हैं। देखिए इतने अच्छे अच्छे फल बैठे, मीठे मीठे फल बैठे आए, है ना। दूसरे भी हो सकते हैं, अभी भी चल रहे हैं कितने सारे और, ठीक है। चार संप्रदाय हैं, संप्रदायों में तो कई शाखाएं हो सकते हैं ना। संप्रदाय मतलब एक प्रमुख संप्रदाय, शुरुआत की ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय, इसकी कई शाखाएं हो सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु कितने शिष्य हुए, छह गोस्वामी के भी और शिष्य हुए, ऐसे अलग अलग होते 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 और ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि एक ही लाइन सही है, और भी लाइन है, जैसे भी अभी है चल रहा है, अभी कितने प्रभुपाद हुए, उनके भी गुरु भाई हैं, प्रभुपाद के गुरु भाई के शिष्य हुए, क्या वो प्रामाणिक नहीं है? वो भी प्रामाणिक है, उनके शिष्य हुए। और आगे चल के हमारे इस्कॉन संस्था में भी ऐसे कितने सारे गुरु होंगे, पीढ़ियां होंगी, है ना। एक मिनट, माइक इधर दी। ठीक है, प्रश्न का जवाब हुआ।
इससे आम भक्त तो भ्रमित हो जाता है, इतने सारे संप्रदाय हैं, कोई कोऑर्डिनेट,
चार संप्रदाय हैं, कितने सारे नहीं,
चार के अंदर की शाखाएं जो हैं,
शाखाएं कितने भी, जैसे गुरु शिष्य बनाते हैं फिर उनके शिष्य हो जाते हैं, उनके शिष्य हो जाते हैं, वो चल रहे थे, ये बढ़ रहे थे जितना बढ़ना है। लेकिन अगर उनका ओरिजिन वो इसी संप्रदाय के आश्रय में है तो काफी है, जो संप्रदाय के सिद्धांत हैं उनको फॉलो कर रहे हैं तो फिर वो ठीक है। शाखाएं कितने भी हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी ज्यादा शाखाएं उतना अच्छा है, मतलब उतना स्वास्थ्य अच्छा है संप्रदाय का।
वो फिर कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि कैसे किधर जाना है हमें?
क्यों कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है।
हर एक कहेगा कि हमारा संप्रदाय ऊंचा है,
जैसे हरेक व्यक्ति को जैसे जैसे रुचि होती है वैसे भगवान उसको उसी तरह से ढकेल देते हैं। तो अमुक संप्रदाय में आदमी आ जाता है तो पिछले जन्म से उसका कोई संस्कार हुआ होगा कि यहां भगवान ने लाया है उसको, और इधर उधर जाने के बजाय जिस संप्रदाय में आए हैं ले लेना चाहिए। और फिर अगर उसे जैसे कोई दूसरे संप्रदाय में है उसे पता चल गया कि यहां चैतन्य महाप्रभु है और उसे और अच्छा गहरा ज्ञान मिल गया और आना चाहते तो आ सकते हैं, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। और कोई प्रश्न किसी के? ठीक है, तो कल हम चर्चा करेंगे किस तरह से अद्वैत आचार्य माधवेंद्रपुरी के शिष्य बने, किस तरह से उन्होंने माधवेंद्रपुरी के आविर्भाव दिवस को मनाया, किस तरह से ईश्वरपुरी ने अपने गुरु महाराज माधवेंद्रपुरी की सेवा की, और किस तरह से माधवेंद्रपुरी के अंतिम दिन कैसे बीते और कैसे उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, ये हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।